के पुत्र भरत का भारत देश महान, जय जय भरत सिद्ध भगवान, जय जय भरत सिद्ध भगवान। ऋषभ देव के पुत्र भरत का भारत देश महान, जय जय भरत सिद्ध भगवान, जय जय भरत सिद्ध भगवान। यशस्वती माता के नंदन, आदिनाथ सुत भरत को वंदन। प्रथम चक्रवर्ती भरतेश्वर का था त्याग महान, जय जय भरत सिद्ध भगवान, जय जय भरत सिद्ध भगवान। ऋषभ देव के पुत्र भरत का भारत देश महान, जय जय भरत सिद्ध भगवान, जय जय भरत सिद्ध भगवान। श्री भरतीशाजियात् भूयात् मंगलमयी त्रिलोकेषु, साकेतायां सप्रभु तिष्ठन् निज जन्मभूमि चिरम्। चलो परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अभ्यात्माओं, भगवान भरत का पुण्यमयी चरित्र आप सब श्रवण कर रहे हैं। प्रस्तुत है भरत का भारत, बहुत ही सुंदर कथानक है भरत राज का। भरत के साथ साथ भगवान ऋषभ देव के संक्षिप्त चरित्र को भी जानना आवश्यक है, क्योंकि भरत भी तो पुत्र भगवान ऋषभ देव के ही थे। तो ऋषभ देव भगवान ने अपने पुत्र पुत्रियों का लालन पालन करके सब कुछ किया। पुनः दो रानियों के साथ उनका विवाह हुआ और उनसे 101 पुत्र और दो पुत्रियों का जन्म होता है। पुनः राजा ऋषभ देव ने अपनी ब्राह्मी सुंदरी पुत्रियों को विद्या दान दिया। समस्त पुत्रों को और पुत्रियों को सभी विद्या कलाओं में निपुण किया और प्रजा को जीवन जीने की कला सिखाई। असीम असी कृषि वाणिज्य विद्या और शिल्प के माध्यम से भोग भूमि से कर्म भूमि का जीवन जीना सिखाया। राजाओं को राजनीति सिखाई और इस प्रकार करते करते 83 लाख वर्ष पूर्व का राज्यकाल निकल जाता है। तब एक दिन राजसभा में नीलांजना नाम की नर्तकी का नृत्य देखते देखते उसकी मृत्यु देखकर अपने अवधिज्ञान से जानकर ऋषभ देव को वैराग्य हो जाता है और वो सिद्धार्थ नाम के वन में जाकर वटवृक्ष के नीचे जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर लेते हैं। पुनः 6 महीने के योग के बाद आहार की चर्या बताने के लिए निकले, उसमें भी 7 महीने 9 दिन और निकल गए। ऐसे 1 साल 39 दिन के उपवास के बाद उन्हें हस्तिनापुर में इक्षुरस का आहार राजा श्रेयांश के द्वारा प्राप्त होता है। वह दिन अक्षय तृतीया का दिन होता है और उसके बाद 1000 साल तक तपस्या करके भगवान ऋषभ देव को केवल ज्ञान हो गया। उस केवल ज्ञान स्थल को भी पुरिम ताल पुरुद्यान के रूप में प्रयाग नगरी के अंदर ही माना जाता है। और केवल ज्ञान होने के बाद उनके द्वितीय पुत्र वृषभसेन, जो पुरिम तालपुर नगर के राजा थे, वे आकर जनेश्वरी दीक्षा धारण कर लेते हैं और भगवान के समोसरण में प्रथम गणधर प्रमुख गणधर बन जाते हैं। अयोध्या के राजा सोमप्रभ और श्रेयांश भी जाकर दीक्षा लेकर भगवान के 84 गणधरों में से गणधर का पद ग्रहण कर लेते हैं। ब्राह्मी सुंदरी भी दीक्षा लेकर आरिकाओं में प्रधान बन जाती हैं, ब्राह्मी को गणिनी का पद प्राप्त होता है और वर्णन आया है कि अनेक कन्याओं ने भी उनके साथ में दीक्षा धारण कर ली थी। ऐसे भगवान ऋषभ देव समो शरण में विराजमान होकर के अपनी दिव्य ध्वनि से सारी भरत क्षेत्र के आर्यखंड में भव्यों को उपदेश देते हैं। एक दिन की बात है, भरत महाराज जिन्हें दीक्षा लेते समय भगवान ऋषभ देव ने अयोध्या का राज्य सौंपा था, बाहुबली को पोदनपुर का राज्य सौंपा और अन्य पुत्रों को अन्य अन्य स्थानों के राज्य सौंप करके दीक्षा धारण की थी, तो अयोध्या के राजा भरत अपने राज सिंहासन पर सुख पूर्वक बैठे हुए थे कि एक साथ तीन संदेश वाहकों ने आकर तीन समाचार एक साथ सुनाए। धर्माधिकारी के रूप में राज पुरोहित ने कहा, हे राजाधिराज, आपके पूज्य पिता भगवान ऋषभ देव को केवल ज्ञान प्रगटा है तो देवों ने अर्धनिमिष मात्र में आकाश में अधर समोसरण की रचना कर दी है और वहां भगवान बीचों बीच में गंधकुटी के अंदर कमलासन पर विराजमान हो गए हैं। दूसरा समाचार आयुधशाला से सेनापति आकर बताते हैं, राजन, आपकी आयुधशाला में एक चक्र रत्न उत्पन्न हुआ है और उसकी दिव्य किरणों से सारी दिशाएं चमकने लगी हैं। तीसरा समाचार, महल से आकर कंचुकी के साथ दासी समाचार देती है, हे देव, अंतापुर में आपकी रानी ने पुत्र रत्न को जन्म दिया है और वह पुत्र भी दसों दिशाओं को आलोकित कर रहा है। भरत महाराज एक साथ तीन समाचार पाकर सोच में पड़ गए, लेकिन तुरंत उन्होंने चिंतन किया कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों में सर्वप्रथम पुरुषार्थ है धर्म पुरुषार्थ, इसलिए मुझे पहले केवल ज्ञान कल्याणक में जाना है। पूरे परिकर को लेकर अपनी रानियों के साथ, अपने पूरे राज्य के लोगों के साथ में भरत महाराज भगवान के केवल ज्ञान कल्याणक में पहुंचते हैं। वहां बहुत बड़ी पूजा करते हैं और उनकी भक्ति को देख करके सौधर्मेंद्र के द्वारा उस समोसरण का प्रमुख स्रोता का पद भरत को सौंप दिया जाता है। अर्थात भरत राज 12 सभाओं में श्रावक की सभा में प्रमुख बन करके और भगवान की दिव्य ध्वनि का श्रवण करते हैं। वृषभ सेन गणधर उस दिव्य ध्वनि को झेल करके द्वादशांग की रचना करते हैं। खूब पूजन वगैरह करी तो मैं समझती हूं कि वह दिन था फाल्गुन कृष्णा एकादशी को। आगम में वर्णन आया है कि उस दिन पहले भरत गए, उन्होंने भगवान के केवल ज्ञान कल्याणक की पूजा की, वहीं पर उनके भाई ने दीक्षा ली, वहीं पर उनकी दोनों बहनों ने, ब्राह्मी सुंदरी ने दीक्षा ली। वह दिवस था पवित्र फाल्गुन कृष्णा एकादशी का। पुनः वहां से आकर के वापिस आकर के अपने परिकर के साथ वापिस आकर के तुरंत पहले आयुधशाला में जाते हैं। जो अर्थ पुरुषार्थ का प्रतीक था, छह खंड कि वसुधा को जीतने के प्रतीक में वह चक्र रत्न उत्पन्न हुआ था, उस चक्र रत्न की पूजा करते हैं और उसके बाद में अंतापुर के अंदर जा करके पुत्र के जन्म का खूब अच्छा उत्सव मनाते हैं। ये सारी समाचार धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ के प्रतीक में पुत्र रत्न की प्राप्ति होना, ये भरत जी के लिए कोई आश्चर्यजनक बात नहीं थी और क्रम क्रम से ही पुरुषार्थ का सेवन किया, इसलिए उनके जीवन में मोक्ष पुरुषार्थ बहुत ही शीघ्र साकार हुआ। आज का चक्रवर्ती यानी आज का मानव जब ऐसे समाचारों को सुनता तो सबसे पहले पुत्र जन्म का उत्सव ही मनाता, लेकिन भरत जी तो धर्म के अवतार थे, धर्म के प्रतीक थे और कहे जाते थे जलते भिन्न कमल है। भरत जी घर में वैरागी, ये सूक्ति निरर्थक नहीं है, इन महापुरुष पर एकदम सार्थक बैठती है। बहुत विस्तृत वर्णन है कि भरत चक्रवर्ती ये सब उत्सव मनाने के बाद कहते हैं शरद ऋतु के स्वच्छ वातावरण में महाराज भरत ने दिग्विजय के लिए अयोध्या से प्रस्थान किया। तो शरद ऋतु में जब भगवान को केवल ज्ञान फाल्गुन कृष्णा एकादशी को हुआ, एक दो दिन हो सकता है छोड़ दिया हो पुत्र जन के उत्सव के बाद, फिर भरत जी उसी फाल्गुन के माह में निकले होंगे और दिग्विजय के लिए निकलते समय उनके जो ड्रेस का वर्णन आया है उसमें कहा गया है महामांगलिक वस्त्र अलंकार उन्होंने धारण किए, चांदनी से बने हुए के समान सफेद बारीक तथा कोमल धोती दुपट्टा, इन दो वस्त्रों को उन्होंने धारण किया और उनका ब्रह्मसूत्र जनेऊ उनके घुटनों तक लटक रहा था, जो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो तट का स्पर्श करता हुआ गंगा जल का प्रवाह उससे सहित हिमवान पर्वत ही हो। यानी भरत के सौंदर्य की बात और भरत की हर वस्तु, हर प्रकार की चीजें, भरत की चाहे ड्रेस हो, चाहे भरत के आभूषण हो, अलंकार हो, उनके अस्त्र शस्त्र हो, सारे एकदम उत्तम और दिव्य थे। तो भरत जी जब निकलते हैं तो अयोध्या के राजमार्ग से निकल रहे थे, उस समय अपने अपने मकानों के छत पर खड़ी हुई सौभाग्यवती स्त्रियां भरत के ऊपर पुष्पांजलि छोड़ रही थी और उच्च स्वर से कह रही थी कि हे ईश आपकी जय हो, हे विजय करने वाले महाराज आप संसार के ऊपर विजय प्राप्त करें, दसों दिशाओं को जीतें और शीघ्र ही चक्रवर्ती बन करके इस अयोध्या नगरी में आकर के हम सबको भी स्नात करें। इसके साथ में वर्णन आया है कि जब भरत जी जाते हैं अयोध्या से पूर्व दिशा की ओर पहले विहार करते हैं, प्रस्थान करते हैं, तो सारथी के मुख से वन की समृद्धि का वर्णन सुनते हुए सम्राट भरत उस वन भूमि को इस तरह से पार कर गए कि उन्हें उसकी लंबाई का पता ही नहीं चला। इन्हें बड़े वेगशाली घोड़े थे, सारी सेना के साथ हाथी घोड़े पयादे सबके साथ, तो उसमें बात आई, मेरा चिंतन गया कि रानियां क्या घर में ही रह गई, महलों में रह गई। तो आदि पुराण के अंदर वर्णन आया कि सेना के साथ हथनियों और पालकियों पर बैठी हुई भरत महाराज की रानियां भी इस गंगा नदी के तटवर्ती बगीचे की शोभा को बड़े प्रेम से देख रही थी। मार्ग में योद्धा लोग जल्दी जल्दी चलते हुए कोलाहल आदि करते रहते थे, अर्थात उनकी रानियां भी साथ साथ में गई, क्योंकि वो खाली ऐसे युद्ध करने के लिए नहीं गए थे, वे तो सारी धरती पर विजय पताका फहराने के लिए गए थे। और रास्ते में जो बड़े बड़े शिविर लग जाते थे, बड़े बड़े नगर बस जाते थे, तो उसमें मुख्य बात थी कि भरत चक्रवर्ती के नवनिधि 14 रत्न भी प्रकट हुए थे, उनमें 2 रत्न विशेष रूप से चक्र रत्न और दंड रत्न, ये दोनों ऐसे रत्न थे कि आगे आगे चल करके और सारे पूरे छावनी बना देते थे, वहां पर पूरी नगरी बस जाती थी, भोजनशाला अलग बन जाती थी और राजसभा अलग लग जाती थी, बस भरत को जाकर राज सिंहासन पर बैठना ही होता था। बड़े बड़े मार्ग को तय करते थे, तो वर्णन आया कि उस समय जब चलते चलते काफी दूर निकल गए, उस समय मध्यान्ह का सूर्य भरत की रानियों के मुख पर पसीनों की बूंदों को लाकर उन्हें कुछ कुछ खेद खिन्न कर रहा था। तभी सम्राट भरत शिविर के समीप पहुंचे और उनके भरत के ऊपर छत्र रत्न से छाया की जा रही थी, देव निर्मित सुंदर रथ पर बैठे हुए थे, उन्हें किसी प्रकार का कोई खेद नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? रास्ते में सुख और दुख हर तरह के प्रसंग आते हैं, रानियों को पसीना भी आया, रानियां सुख का भी अनुभव करती थी, तरह तरह के प्राकृतिक सौंदर्य के सीन को भी देखती थी, दृश्यों को देखकर खुश भी होती थी, क्योंकि चक्रवर्ती बनने वाला पति उनके साथ में था। सारी व्यवस्थाएं साथ में थी, उन्हें कुछ करना तो पड़ता ही नहीं था। तो ऐसे करके वे रानियां और पूरा राज समूह भरत के साथ में चल रहा था। जगह जगह जहां भी पहुंचते थे सारी नगर के राजा लोग आकर के नमन करते थे। यही चक्रवर्ती की विजय है। चक्रवर्ती के पास आकर अपना सारा राज्य सौंप देते थे, अपने को समर्पित कर देते थे, मणि रत्न और कोई कोई अपनी कन्याएं ला करके सौंप देते थे। और जब चक्रवर्ती उन्हें स्वीकार कर लेते थे तो राजा लोग स्वयं कृतकृत्य होकर के उनके गुणों का बखान करने लगते थे। तो ऐसा नहीं कि चक्रवर्ती भरत बस सारी चीजें राजाओं की रख लेते थे, उन्हें अपना दास बना लेते थे। सबको खूब अच्छे से उनका राज्य सौंप करके और उन्हें व्यवस्थाएं बता करके और आगे के लिए चले जाते थे। तो सम्राट भरत ने सबसे पहले पूर्व दिशा को जीता, यानी पूर्व दिशा की ओर बढ़ते 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 और लवण समुद्र के निकट में लगभग पहुंचते हैं। रात्रि विश्राम के बाद एक बार प्रातः काल होते ही भगवान की वंदना, यानी भगवान की प्रतिमा, भगवान का रथ सब चक्रवर्ती भरत के साथ साथ चलता था। क्योंकि भरत जी ऐसे गृहस्थ थे, सदगृहस्थ, कि बिना भगवान का अभिषेक किए, बिना भगवान की पूजा किए अन्न जल भी नहीं ग्रहण कर सकते थे। तो जिन वंदना आदि प्रातःकालीन क्रियाओं को करके चक्ररत्न को आगे प्रस्थान करा दिया। छह खंड अवस्था में किसी के द्वारा भी उल्लंघन न करने योग्य चक्ररत्न और शत्रुओं को दंडित करने वाला दंड रत्न, ये दोनों चक्रवर्ती की सेना के आगे आगे रहते थे। और वे दोनों 1,000 देवों के द्वारा रक्षित थे, माने ये सब दिव्य वस्तुएं थी। चक्रवर्ती की विजय के ये दो ही कारण विशेष थे, बाकी तो जितने रत्न निधियां सब थे वे सभी वैभव सामग्री केवल शोभा के लिए ही थी। इस प्रकार से चक्रवर्ती भरत विजयार्थ पर्वत के साथ स्पर्धा करने वाले विजय पर्वत नाम के उत्तम हाथी पर सवार होकर प्रस्थान कर रहे थे। तब एक बार वे चलते 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 और एक समुद्र के निकट पहुंचते हैं। आगे वर्णन सुनते रहिए कि किस प्रकार से समुद्र में भी जाकर उसके अंदर के भी जो उपद्वीप उप समुद्र वगैरह हुआ करते थे वहां पर भी अपनी विजय पताका को फहराया। ऐसे भरत स्वामी का पुण्य चरित्र सुनते हुए हम सब भी क्षण भर के लिए भेद विज्ञान की कल्पना करें और भरत भगवान के गुणों का स्मरण करते हुए हम आगे इसी प्रकार से भरत चक्रवर्ती के कथानक को सुनते रहें। यही आप सबके लिए मंगल प्रेरणा है।